फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगम्बरों को इनकी कौमों की तरफ भेजा और वो इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले से छुटला दिया था इसे फिर मान करना दिया। हाईलाइट कीजिए, ये इंसानों का वीक पॉइंट है। एक दफा उनके मुंह से नो निकल जाए फिर यस नहीं होता, ईगो प्रॉब्लम। एक दफा चूंकि नहीं माना तौफीक छिनती है, और ये बात वैसे कुरान पढ़ने के साथ देखी गई है। कुरान सुनने के दौरान अगर एक दफा यस कह दे तो अल्लाह ताला उसको आसान कर देता है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी। कभी आपने कैंडल जलाई होगी, मोटी सी कैंडल हो, अब आपने जलाई, जलते जलते वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप देखते हैं वो इस तरह से हो जाती है ना। अब एकदम आप उसको बंद करेंगे तो ठंडी होगी तो कैसी होगी, वैसी हो जाएगी। टेढ़ी थी तो टेढ़ी, कतरे थे तो कतरे। सेम इसी तरह कुरान सुनते वक्त हम पिघले होते हैं, उस वक्त हम मोल्टेड फॉर्म में होते हैं। अब पिघली भी मोम जो मोमबत्ती के इर्द-गिर्द, आप उसकी शक्ल कोई बनाना चाहे बना सकते हैं। बचपन में लोग खेलते थे, हम बच्चे थे क्या करते थे, उसकी रस्सियां बना रहे थे, कभी उसकी मोती बनाते थे, गोलियां। जो ही वो ठंडी होती है फिर कुछ करेंगे तो टूट जाएगी। कुरान सुनते वक्त हम पिघले होते हैं। यहां जो मसला अपनी जात से निकाल लेंगे, अंदर से कोई बुगज कीने ईगो मसले बता, अपनी एक नई शख्सियत बनाना चाहते हैं, कुरान आपको हेल्प करेगा। जो ही यहां से उठ के बाहर जाएंगे ठंडे हो जाएंगे, फिर अमल नहीं होगा। और पहली दफा के कुरान के बाद जो अमल होता है वो पक्का अमल होता है, क्योंकि उसमें इंसान का दिल खुला होता है। लेकिन जब हम इसको नहीं लेते तो फिर बाद में दोबारा मानने की उम्मीद ही नहीं रहती। और यकीन कीजिए कि ये बहुत सच्ची बात है कि दोबारा मौका बहुत कम होता है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पे लगा देते हैं। फिर इनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उनके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास से हक इनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा तुम हक को ये कहते हो कि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर तो फलाह नहीं पाते। उन्होंने जवाब दिया क्या तू इसलिए आया है कि हमें इस तरीके से फेरते जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया? हाईलाइट कीजिएगा, आज भी लोगों का यही मसला है, हर दौर का मसला कि खानदान के तरीकों से हम नहीं फिर सकते। वैसे दिल में बुगज होते हैं अमूमन लोगों के अपने रिश्तेदारों के लिए, खानदान से कोई इतनी बनती नहीं है। दोस्तों, रिश्तेदारों, कुलीग्स और शहर में रहने वालों से बड़ी मोहब्बतें होती हैं, लेकिन जहां लाइफस्टाइल की, रस्म और रिवाज की बात होगी, बच्चों के शादी ब्याह करने के मौके आएंगे, कहेंगे खानदान को नाराज नहीं कर सकते। यही उस दौर का मसला था, आज भी ये था। खुद से पूछते हैं क्या मैं खानदान की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज करती हूं, और क्या अल्लाह की रजा की खातिर मैं अपने खानदान को कभी नाराज किया? ये सिंपल सा क्राइटेरियन है, ऐसे टेस्ट है आपका मेरा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के अल्लाह को खुश करना हमारी जिंदगी का मोटो बन जाए। फिर फरमाया और इससे एक और बात भी, और वो क्या है कि तुम हमें उस तरीके से फेरते जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, और जमीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए। इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं। और फिर उन्होंने अपने आदमियों से कहा हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने इनसे कहा जो कुछ तुम्हें फेंकना फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंचर फेंक दिए तो मूसा ने कहा ये जो कुछ तुमने फेंका ये जादू है, अल्लाह इसे भी बातिल किए देता है और मुफसिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक करके दिखाता है, ख्वाब मुजरिमों को कितना ही नागवार हो। जादूगर कौन थे? रिवर्ड्स थे, न्यू मुस्लिम थे। बनी इसराइल जो कि जद्दी पुश्ती मुसलमान थे ना, उनके अंदर वो ईमान नहीं था, ठंडे हो गए थे। जैसे हम ठंडे हो चुके हैं सुन सुन के। आप देखिए दो तरह के ऑडियंस होते हैं एक स्पीकर के सामने, एक वो जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनके चेहरों पे जो तड़प तलब दुख खुशी होती है उसको चेहरों से पढ़ा जाता है। एक दूसरी ऑडियंस वो होती है जिनके पास दर्स भी होते, कुरान क्लासेस भी लेते, तजवीद भी लेते, लंबे लंबे कोर्स कर चुके, आज इस वीकेंड पे ये स्पीकर उस पे वो है। आप उनको पढ़ाए ना, स्पार्ट चेहरे, नो फीलिंग एट ऑल, फीलिंग लेस, एक्सप्रेशन लेस। क्यों? सुन सुन के सुन हो गए। कुरान सुनकर बंदे के चेहरे पे एक रंग आए और एक जाए तो समझिए कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। देखिए जिंदा चीज रंग बदलती है ना, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला यही बात कह रहे हैं कि जादूगरों ने पहली दफा में मूसा की बात सुन के क्यों मानी? रिवर्ड्स थे, खाली दिल से आ रहे थे, लेकिन बनी इसराइल जो जद्दी पुश्ती मुसलमान थे उनके दिल ठंडे थे, उनका दिल नहीं खुल सका। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमारा दिल खोल दे। फिर देखो मूसा को इसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने ना माना, इसको हाईलाइट करेंगे। यूथ, आप में से जो यंग है, और मशलब सारे ही यंग है, बस ये कि कुछ नए नए यंग है, कुछ पुराने यंग है। कभी जवान तुम भी थे ना, कह दे जवान तो है ना, कभी तो थे। और जिसका दिल जवान है वो जवान है, बूढ़ा कैसे होगा। हमेशा हक को नबियों के सामने जब भी लोग आए, यूथ ने माना। आपको देखिए नबी सल्लम की जिंदगी में, पूरी आपकी जिंदगी, सिर्फ एक शख्स जो मुस्लिम हुए वो आपसे उम्र में बड़े थे, बाकी सब आपसे छोटे थे। और वो एक शख्स कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। 2 साल का फर्क था इधर, 2 साल का फर्क उधर, दुनिया से जाने में हो गया। सब यूथ ने माना। बाप अल्लाह के नबी के मुकाबले में, ये मक्की दौर अगर आप जहन में रखें इन सूरतों का, तो बाप आपसे लड़ रहे हैं और उन्हीं के बेटे यूथ ग्रुप बनाकर अल्लाह के नबी के सपोर्टर बने हुए। आज भी ये हो रहा है, आज भी वो बाप जो फिरका वारियत और खानदानी तासुब और मेरा ये मसलक मेरी जमत, वो मस्जिदों की जागीरें बना के बैठे हैं। मैंने इधर से नहीं हिलना, मैंने इस तरीके के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, और उनके बच्चों को अल्लाह ने कुरान सुनना दे दी। आज भी बूढ़े बाप क्लीन शेव दिखेंगे और जवान बच्चे माशाल्लाह इतनी प्यारी दाढ़ियां सुन्नत चेहरों के साथ। तो ये चेंज आती है और ये गुड चेंज है। इस वक्त ये चेंज उम्मत मुस्लिमा में दिख रही है। और वही बात कि हमने एक पूरी जनरेशन जाया कर दी, माने के ना माने। इस वक्त पेरेंट्स की सूरत में जो जनरेशन दिख रही है, टोटल लॉस्ट है। फिरका वारियत का इतना गहरा असर है उन पे, नामों को लेबलों को इतने ठप्पे लगा दिए। और दूसरी सूरत प्रेशर में आए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, किसी और मुल्क की बात करूंगी कि वहां सिस्टर्स ने खुद कहा कि जब हम इस मुल्क में आए, हम पाकिस्तान से भूखे नंगे आए थे, कुछ नहीं था। एक गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी कि जिसको जाना चले जाए, और जिस मुल्क में आए वहां लोगों की जरूरत थी, उन्होंने कुछ देर के लिए वीजे खोले, पूरी दुनिया से लोग। उस वक्त हमारे गाँव के गाँव वहां आ गए और वो कहते हैं कि हम जो गुर्बत के मारे गांव देहातों में थे, हमने यहां आकर सिर्फ एक काम किया, माल कमाया। खुद सिस्टर सुनाती है, सुबह से रात तक स्टोर्स में और जाके मर्दों के साथ काम करते थे। नुकसान क्या हुआ आपको पता? बच्चे ओवरलुक हो गए, और वो जनरेशन उनकी जो इस वक्त है, उनकी आंखों के आंसू हैं। कोई घराना खुश होगा, वल्ला ही कोई घर होगा। लड़के करप्ट हो गए, बिल्कुल हद से निकल गए, इस्लाम वाली को बात नहीं दिखी, और लड़कियां खुद सर हो गई, पूरी जनरेशन चली गई। फिर उसके बाद अब होश आता है। वो कहते हैं वो दौलत जिसको ले, और बच्चे वो रोते हैं, बच्चे वो उनके आगे आंखें दिखाते हैं कि आपने यहां आके क्या किया, पैसा कमाया, आपने हमें तो प्यार ही नहीं दिया। सुबह जाने से रात आने तक बच्चों को ना मां दिखे ना बाप दिखे, वो बच्चे प्यार कहां पाएंगे। तो एक लॉस्ट जनरेशन के बाद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि मशरिक से उभरते सूरज को देख और चांद को देख, अब शऊर शुरू हुआ है। आपको भी फील होता होगा, सोसाइटी में, कम्युनिटीज में, मस्जिदों में, सड़कों पे, मॉल्स में, आपको इंशाल्लाह अब बाशऊर लोग देखेंगे। इस वक्त जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, जिनके दो दो चार चार साल के बच्चे हैं, आप देखिए जितना उनमें शौक है कि अपने बच्चों को हमने इस्लामिक एजुकेशन देनी है, इस दौर से पहले नहीं था। वो क्या था? कुरान पूरा करा दो, मौलवी साहब से को आके सपारा पढ़ा दे, आमीन कर दो, बिस्मिल्लाह कर दो, शौर ही नहीं था। और आप फील करेंगे किसी कौम का नसीब कब जागता है, जब लोग कुरान को हिदायत की किताब समझ के पढ़ते हैं। पिछली जनरेशन ने इसको सवाब की और बरकत की और इसाले सवाब की किताब पढ़ के समझा, इसलिए पूरी जनरेशन लॉस्ट है। किसी को ये नहीं आज तक पता कि सूरज यूनुस का मैसेज क्या है। मैं सोच रही थी ये जल्दी होगी, कोई नहीं जल्दी हो रही, क्योंकि इसमें आज इस उम्मत का जवाब है। इस कुरान जिसका टॉपिक इस सूरत के साथ जुड़ा हुआ है, इस कुरान को अगर आज मैंने और आपने एज इट इज कबूल ना किया, तब्दीली नहीं आएगी। कभी डाइल्यूटेड कुरान से उम्मतें फनाह नहीं पाती। दूसरों की मर्जी के वर्जन पेश करके आप दुनिया में इज्जत पाए, ये कभी ना हुआ ना कभी होगा। वक्ती तौर पे हम अल्लाह की मदद को और डिले करते हैं और हमारी जायदादें बन जाती हैं, हम कहते हैं हम बड़े खुश हैं, लेकिन वो जायदादें हमारे लिए खुशी नहीं बनती, क्योंकि सच्ची खुशियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह के नबियों के हालात से हमें ये बात समझ आ रही है कि जब वक्त का फिरौन आया तो मूसा के दौर में सिर्फ चंद जवानों ने उसको माना। वजह क्या थी? फिरौन के डर से। कल भी लोग फिरौन से डरे, आज भी लोग तागुत से डरते हैं। फरमाया और खुद अपनी कौम के सरबरवर्दा वो लोगों के डर से जिन्हें खौफ था कि फिरौन इनको अजाब में मुबतला करेगा। आज माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं, बेटा जरा होले होले दीन में जाओ, बेटा इतना सख्त नहीं करना। एक यंग बच्चा था, ऐसे 8-9 साल के करीब का होगा, तो किसी तरह से भी मुलाकात उससे होती थी। तो उसने एक दिन कहा कि टीचर, क्या मैं अपने स्कूल अपने दोस्त को इस्लाम के बारे में नहीं बता सकता? मैंने कहा क्या, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा मेरे एक चाइनीज दोस्त था और वो स्कूल में आता है, तो मैं उससे बातें करता तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने अपनी अम्मी को आके खुश होके बताया, तो मेरी अम्मी ने कहा, नाना बेटा ऐसी ना बातें करो, तुम्हें स्कूल वाले निकाल देंगे। तो टीचर, क्या मैं अपने दोस्त को इस्लाम की बात नहीं बता सकता? अब आप मुझे बताइए, क्या वो बच्चा कभी एक अच्छा दाई दीन बनेगा? फिर मैंने उसको टेम किया, मैंने उसको प्यार से बताया कि बेटा क्या बताना है क्या नहीं बताना, बस इस बात पे करना है, इस पे रहना है और दूसरी कोई बात नहीं करनी। आप अपने बच्चों को खुद बुजदिल बना देंगे कि आप इस्लाम की दावत ना दो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि आप इस्लाम है। तो याद रखिए, आज यूथ को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, इनकी फसल अगर अपनी जिंदगी में देखनी है तो अच्छा, लेकिन याद रखिए कि उम्र बड़ी होती है ना तो मसलहतें भी बड़ी होने लगती हैं। बड़े और बूढ़े मसलहत पसंद होते हैं, और जवान और यूथ अग्रेसिव होती है। उनको सच समझ आ गया, वो कहते हैं हमको झूठे, हमने क्या किया, और बड़े कहते नहीं चुप कर जाओ चुप कर जाओ, तुम्हें कोई कुछ कहना दे। तो अल्लाह ताला का ये असूल सच्चा है कि जब किसी जवान कौम को बात समझ आ जाती है तो फिर उस कौम का नसीब बदल जाता है। और वाकया ये है कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था और वो इन लोगों में से था जो किसी हद पर नहीं रुकते। मूसा ने अपनी कौम से कहा, लोगो अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इस पर भरोसा करो अगर तुम मुसलमान हो। हाईलाइट करें, अगर आज मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो क्या वो यही जुमला नहीं बोलेंगे? आप इमेजिन कीजिए, आज अल्लाह के नबी आए तो हमें आपको क्या मशवरे देके जाएंगे? चलो मुश्किल दौर है, छोड़ दो फिर, चलो खैर है ना, अब जो भी होता करो। ये मशवरे तो उन्होंने हजरत बिलाल को नहीं दिए, जिनके सीने पर रेत रख के, पत्थर रख के और उनकी चर्बी पिघला दी जाती थी, उनको नहीं दिए। तो क्या आज आप जरा अपने ऊपर लीजिए, आप कहते हैं मुस्लिम बहुत मजबूर हैं, बड़े सख्त हालात हैं, सारी दुनिया की इंटेलिजेंसीज हमारे पीछे लगी है, मान लीजिए। चलिए, अल्लाह के नबी से ज्यादा हमारा कोई सिंसियर होगा, वो आके क्या कहेंगे? चलो को भाई शाबाश, जितना होता कर लो, छोड़ दो, वो का कुछ नहीं होगा। वो यही कहेंगे, हाँ मन तुम बिल्ला ही फालई ही तवक्कलो इन कुन तुम मुस्लिम। देखिए लफ्ज इन कुन तुम में शर्त है, अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह के तवक्कुल पे मदद करो। इस्लाम ये नहीं कहता दूसरों को छेड़ो, लेकिन अपना अमल ना छोड़ो, असल ये दावत है। फ़क़ालू अल्लाहि तवक्कलना, और उन्होंने कहा हमने रब पर भरोसा किया, ए रब हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना और अपनी रहमत से हमको काफिरों से निजात दे। ये है असल बात। आज अगर हम भी फितनों से बचना चाहते हैं, पहली तो बात है ये दुआ याद कर लें, रब्बना ला तजलना फितनतन लिल कौमि ज़ालिमीन। और मुसलमान गैरों के लिए फितना कब बनता है? जब वो अपने दीन पे आधा अमल करता है। लोगों को कंफ्यूज किया हुआ आज के मुसलमानों ने, वो कहते हैं किस इस्लाम को माने, आज का कुरान कुछ और है और आज का मुसलमान कुछ और है। और आपको कहता है कि इस कुरान के बारे में बेटर रसूल कुछ इस तरह के एक राइटर है, उनका कमेंट है क्या, बेस्ट बुक विद वर्स्ट फॉलोअर्स, दुनिया की बेहतरीन किताब बदतरीन मानने वालों के सामने। छोटी छोटी बात पे तुम झूठ बोलते हैं, वीजा लेने के लिए झूठ बोलते हैं, पासपोर्ट लेने के लिए झूठ बोलते हैं, आईडीज हम छुपाते, उम्र हम छुपाते, एरोप्लेन के टिकट लेने के लिए बच्चे की उम्र आगे पीछे करते, ये किरदार लोग देखते हैं। जब मुसलमान इतना बेनियाज हो जाए कि दुनिया का नफा नुकसान मिले ना मिले झूठ नहीं बोलना, फिर देखिए क्या होगा। यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ दौलत हुसन इज्जत सब कुछ तुमको पा सकते हो, लेकिन ये तुम्हें खैर नहीं देगा, फितना बनेगा। आज आप देखिए जरा गैर मुस्लिमों को देखें, हैं काफिर मानते हम, लेकिन कभी आप अपेरेंटली उनको देखें ऐसे लगता है दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग, हेल्दी सेहतमंद चमके हुए, प्लानिंग है उनके, मुल्क अच्छे, एंटरटेनमेंट उनकी अच्छी। और आज हम मुसलमान देखें कोई जगह हमारी सीढ़ी नहीं दिखती, इल्ला माशाल्लाह। बस दफा हम अपनी हेल्प के लिए नॉन मुस्लिम साथियों को बुला लेते हैं, तो मैं एक जगह ऐसी जगह थी, तो इफ्तारी थी, और जो हम इफ्तारी पे टूटते हैं और जो हम खाना ज़ाया करते हैं, तो बाद में मैंने देखा एक क्लीनिंग लेडी हेल्प सफाई कर रही थी, तो मेरा सर झुका जा रहा था कि वो क्या सोच के जाएगी, या मुस्लिम ऐसे भूखे होते हैं, इतना डालते हैं और इतना ज़ाया करते हैं और इतना कचरा फेंकते हैं। टूट के वो औरत गई होगी घर कि ये कैसे मुसलमान है। तो फिर वही बात कहती हूँ, किरदार पैदा करेंगे तो इज्जत होगी। हमें अपनी पर्सनैलिटीज को ग्रूम करने की जरूरत है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। और हमने मूसा और इनके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया करो, और अपने इन मकानों को किबला ठहरा लो, और नमाज कायम करो, और अहले ईमान को बिशारा दो। ये आज भी हर उस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को मशवरा है जहां अगर मजहब के नाम पे पाबंदी है, तुम्हें बाहर नहीं दीन सीखने देते, तुम्हें बाहर न मस्जिदें नहीं बनाने देते, अपने घरों को मस्जिदें बना लो, अपने घरों को दीनी इदारे बना लो। घर में तो हर एक की मर्जी चलती है, और जब घर किबले रुख नहीं होते ना, और घरों का किबला रुख होना क्या है कि घरों में इस्लाम के मुताबिक इंसान जाए, तो याद रखिए जब घर किबले नहीं बनते तो बाहर के किबलों से फायदा नहीं होता। आज भी आप देखिए कि अल्लाह ताला हमें इसी की दावत देता है, और फरमाए अहले ईमान को बशारत दे दो। वकाल मूसा रब्बना इन्नका अतैता फिरौन व मलअहु ज़ीना। मूसा ने दुआ की है, हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अम्वाल से नवाज रखा है, और अब क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाए। जरा इधर 3 सेकंड गौर करें, आपके बच्चे भी आपसे यही सवाल करते हैं कि अम्मी अगर हम मुसलमान हैं, हम अच्छे हैं, अल्लाह हमें पसंद करता है, मुस्लिम इज द गुड मसलक और रिलीजन, तो फिर हम आज जलील क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं? और अल्लाह अगर नॉन मुस्लिम को पसंद नहीं करता तो फिर उनके पास इतने अच्छे अच्छे घर क्यों हैं और इनकी गाड़ियां अच्छी क्यों हैं? ये फितना है। देखिए जब हम गैर मुस्लिमों को इन जीनत और अम्वाल के साथ देखते हैं तो हम पता क्या सोच लेते हैं कि इनको कुफर की वजह से ये सब मिला। तो आपने ऐसे सवालों का जवाब बच्चों को क्या देना है कि बेटा वो दुनिया में मेहनत करते हैं, उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। और याद रखिए कि अल्लाह का कानून इस दुनिया के लिए मोमिन और काफिर के लिए सेम है। मुसलमान मेहनत करेगा, काफिर मेहनत करेगा, दोनों का रिजल्ट मिलेगा। मुसलमान ऑर्गेनाइज होगा, काफिर ऑर्गेनाइज होगा, सेम रिजल्ट्स हैं। मुसलमान सच बोलेगा, काफिर बोलेगा, सेम। आखिरत के मामले भी फर्क है। तो आज इस दुनिया में जो लोग तरक्की कर रहे हैं ये बातों की बुनियाद पे नहीं कर रहे, मेहनत की बुनियाद पे कर रहे हैं। हम उनसे ही अगर ये कुछ सीख लेना तो कम अज कम हमारी दुनिया तो अच्छी हो जाए। तो लिहाजा ऐसी बात करके मूसा ने कहा, ऐ रब क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाए? ऐ रब इनके माल गारत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर साबित कर दे कि ईमान न लाए जब तक के दर्दनाक अजाब न देख ले। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई, साबित कदम रहो, और इन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजार लिया, फिर फिरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गरज से इनके पीछे चले, हत्ता के जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा। ये लिख लें आखिरी अल्फाज फिरौन के, कुरान ने उसको प्रिजर्व कर दिया, क्योंकि लफ्ज बड़े खूबसूरत है लेकिन मौका चला गया। क्या काला आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन। आप कहेंगे फिरौन का इंजाम कितना खूबसूरत हुआ। नहीं, इंजाम के बाद क्या बोला, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी इसके सिवा कोई और नहीं जिस पर बनी इसराइली ईमान लाए, और मैं भी सरे ताज झुका देने वालों में से हूं। लेकिन वही बात है कि बड़ी देर की मेहर बातें आते, जवाब सुन लीजिए, आ लाना क्या अब ही मान लाता है, हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। फल जी कभी बदने, बस आज हम तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। गौर कीजिए, हकीकत है कि वो फिरौन अल्लाह ने जिसकी बात इस आयत में की, इसको नंबर नोट कर लीजिए, ये कुरान की सच्चाई की इतनी बड़ी दलील है कि वो फिरौन जब डिस्कवर हुआ और जिसने उसको डिस्कवर किया और उसकी पट्टियां खोली और उसके जिस्म पे नमक था, जब उसको बताया कि कुरान में आ गया फल यौमन नजी का भी बदनी का, गालिबन उसका नाम भी कुछ इसी तरह से जहन में आ रहा डॉक्टर का, तो वो मुसलमान हो गया था। कि ये कुरान की सच्चाई की दलील है कि अल्लाह ने फिरौन की लाश को प्रिजर्व किया, आज भी मौजूद है, सारी दुनिया में लेके उसको घूमते हैं इबरत से नहीं, बस शौक से दिखाते हैं, कई कई 100 पाउंड उसकी टिकट है कि आओ इसको देख लो। इबरत के लिए देखते तो 100 पाउंड भी कुछ नहीं था, लेकिन आप देखिए कि लोग निशानियों से गाफिल हैं। आज उसी को हीरो बनाकर पूरी इजिप्शियन तहजीब के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। मैं खुद जाके रह के देख चुकी हूँ, कुरान पढ़े तो जिस फिरौन का जिक्र आता है ना, या जिस फिरौन का तस्वर आता है, आज आप इजिप्ट में जाए आपको वो फिरौन नहीं लगता, हर जगह उसकी ममीज लगी हुई। और जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा उनके बच्चे फिरौन को हीरो कहते हैं। ये जवाल की अलामत है उम्मत मुस्लिमा की। चंद बुत सजा के आप कहते हैं ये फला तहसीब फला, वो शिर्क वाली तहसीब है, तो अल्लाह ताला ने उसको प्रिजर्व किया, आज भी मौजूद है, और ये कुरान की सच्चाई की एक बहुत अलामत है। वलकत बवान बनी इसराइला, हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और नहायत उम्दा वसाइले जिंदगी इनको अता किए। फिर क्या हुआ? आप इसको हाईलाइट कीजिए। बनी इसराइल को इतने साल की मुश्किलों के बाद अल्लाह ने एक ठिकाना दिया, मुझे और आपको दिया, बना हमारा अपना मुल्क। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वहां में इख्तलाफ किया, मगर इस वक्त जब इल्म इनके पास आ चुका था। अफसोस की बात है, हम मुसलमानों ने भी अपने लिए जमीन के टुकड़े मांगे, अल्लाह ने दे दिए, मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। उसके बाद हम किस चीज में पड़ गए? इख्तलाफात में पड़ गए। आज तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन सकी हमारे मुल्कों में, वजह इख्तलाफ। कहां का हो, कई जातें बट गई, कहीं सिंधी मुहाजर और बलोची और पठान का तसव्वुर आ गया, फिर ऊपर गए तो दीन के नाम पे इख्तलाफात हो गए। तो याद रखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जंग होगी ना ओहदों की, तुम कौन मैं कौन हम कौन, वो कभी नहीं पनपेगी। यहां यही हुआ, बनी इसराइल में फूट पड़ने की वजह ये थी, 12 कबीलों में बट गए थे। इसी का तस्करा यहां आ रहा है। का यकीनन तेरा रब क्यामत के रोज इनके दरमियान फैसला करेगा। किस बात का? जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। अब अगर आप इस हिदायत की तरफ से कुछ शक में हैं जो हमने आप पर नाजिल की, तो इन लोगों से पूछ लीजिए जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं, फिल वाकई ये तेरे पास हक ही आया है तेरे रब की तरफ से, बस तू शक करने वालों में ना हो जा और इन लोगों में शामिल ना हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वरना आप खुद नुकसान उठाने वालों में होंगे। हकीकत है कि जिन लोगों पर तेरे रब का कॉल सच हुआ, इनके सामने ख्वाह कोई निशानी आ जाए, वो कभी ईमान नहीं लाते। दुआ करें अल्लाह मैं ऐसे लोगों में ना हूं। अल्लाह कहते सख्त से सख्त आयतें भी इनको पढ़ के सुनाओ ना, इनके दिल नहीं रोते, इनके अंदर वो गुदास नहीं पैदा होता। हाँ, जब तक के दर्दनाक अजाब सामने आता ना देखे, तो इनकी आंखों से आंसू निकलेंगे अजाब को देखकर। फिर कैसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान ले आई हो और इसका ईमान इसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो? यूनुस की कौम के सिवा इसकी कोई नजीर नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई, अलबत्ता हमने इन पर से दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया था और इनको एक मुद्दत तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। यह है कौम यूनुस, आप कह लीजिए कि एक एक्सेप्शन है कौम यूनुस के साथ। हुआ क्या था कि कौम यूनुस पर अजाब के असरात शुरू हो गए थे, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, ये सूरत अंबिया में हम पढ़ेंगे। लेकिन बस अल्लाह ने अजाब पकड़ लिया, और अल्लाह का एक फैसला है कि जब किसी कौम पर अजाब के असरात शुरू हो जाते हैं, साइंस शुरू, फिर उसको टाला नहीं जाता। लेकिन इस कौम ने जो ही अजाब देखा, इज्तमाई तौबा की, अपने बुत तोड़े, खराबियां छोड़ी, रोते धोते जंगलों में गए, सजदों में गिर गए। ये बात मैंने इतनी क्यों कही? इस वक्त उम्मत मुस्लिमों को इसी की जरूरत है। मैं और आप अपनी जाती तौबा के साथ हालात को बदलता नहीं देख रहे, तो इज्तमाई तौबा की जरूरत है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह के आए हुए अजाब टलेंगे, और अल्लाह टाल देता है। अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। फिर अगर तेरे रब की मर्जी ना होती तो जमीन में सब मोमिन और फरमा बरदार ही हों, तो सारे अहले जमीन ईमान ले आए होते, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो मोमिन हो जाएं? कोई मुतनफ़िस अल्लाह की इजाजत के बगैर ईमान नहीं ला सकता, और अल्लाह का ये तरीका है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते वो इन पर गंदगी डाल देता है। याद रखिए, अल्लाह का ये तरीका है। इनसे कहो आसमानो जमीन में जो कुछ, ऐसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते, इनके लिए निशानी और तंबी है, आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं? अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के मुंतजिर हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके? इनसे कहो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ, फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लेते हैं जो ईमान लाए, और हमारा यही तरीका है। क्या हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन, इसको हाईलाइट कीजिएगा, हम पर हक है कि मोमिनों को बचा लें। अल्लाह ने कल भी मोमिनों को ईमान की वजह से बचाया, हजरत नूह के दौर से लेकर पिछले तमाम अंबिया के दौर में आज भी अल्लाह का यही तरीका है। जितनी अल्लाह की मदद हम चाहते हैं उतना ईमान लाना पड़ेगा। आप देखिए कि जिस्म की सेहत हो बीमारी हो सब अल्लाह के हाथ में, इसी तरह रूह की सेहत और बीमारी हमारे हाथ में। इस जुमले को मैं बोलती हूँ, लिखिएगा, जिस्म की सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में, रूह की सेहत और बीमारी हमारे हाथ में। चाहे अपनी रूह को बीमार कर लें, चाहे सेहत दिलवा लें। अल्लाह ताला हमें सेहत की तौफीक दे। ए नबी, कह दो लोगों, अब भी अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो, मैं उनकी बंदगी नहीं करता। ओपन क्लियरली अल्लाह के नबी ने बता दिया, बल्कि सिर्फ इसी जात की बंदगी करता हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत है। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ, और मुझको फरमाया गया कि यकसू होकर अपने आप को ठीक इस दीन पर कायम कर दे और हरगिज हरगिज मुशरिकों में ना होना। दुआ करें कि हम भी हनीफ बन जाएं, फोकस्ड, अल्लाह के बनकर किसी दूसरे की तरफ नजर उठाने की कोशिश ना करें, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो ना तुम्हें फायदा दे सकती और ना नुकसान। अगर आप ऐसा करेंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे। और बात क्या है, वहीं यमसस्कुल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुवा। और अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाल ले तो खुद इसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो आपके हक में किसी भलाई का इरादा करें तो इसके फजल को फेरने वाला कोई नहीं। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आप यहां जरा लिखिए, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया याद करें, पूरी कोशिश की आपने कि नुकसान ना हो, फिर भी हो गया, कोई चीज याद आई आपको? सोचा कि ये नुकसान ना हो, ये खाना ना जले, जल गया, हादसा ना हो गया, बच्चे को तकलीफ ना हो गई, बीमार ना हो बच्चा, हो गया, होते हैं कि नहीं? जब कोई ऐसा वक्त आए तो सोच लें ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। और आप सोचिए कोई इससे ऑपोजिट, आपकी फैमिली वालों ने, दोस्तों ने, खानदान ने, हसद वालों ने, किसी ने सोचा आपको कोई खैर ना मिले, लेकिन आपको मिल गई। ऐसा होता है, बहुत दफा होता है, तो ये अल्लाह देता है। अब मुझे आप बताइए कि हमारा नफा और नुकसान जिस जात के साथ जुड़ा हुआ है, हमें उसकी ज्यादा केयर होगी कि उनकी जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है? फिर किसका प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा होना चाहिए? अल्लाह का। अल्लाह के प्रेशर में आने वाले दूसरों के प्रेशर से निकल जाते हैं। अब आखिरी आयतों में अल्लाह ताला बड़े प्यार से अपने नबी को तसल्ली देते हैं, और मैंने और आपने शायद उस दर्द को महसूस नहीं किया जो इस सूरत के नजूल के वक्त अल्लाह के नबी के दिल पे था। जिस शख्स को हर तरफ से कोई रिजेक्ट करे, इधर गए तो लोगों ने मुंह बना लिया, उधर गए तो आवाज कस दी, उधर गए तो बातें कर दी, कौन सा कुरान आया जी, ये क्या सुना रहे हैं जी, ये क्या आप नई नई बातें कर रहे हैं, तो हम जैसे होते तो डिप्रेशन के मरीज बन चुके होते। लेकिन अल्लाह के नबियों को डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि उनको पता था कि हम ये सब तकलीफें अल्लाह के रास्ते में सह रहे हैं। इसलिए फरमाया, कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है। हमारे पास आए, कुरान सुनते वक्त आपको यकीन आता कि ये हक है? फिर आपको इस आयत में मुखातिब किया गया। अब जो सीधी राह इख्तियार करे इसकी रास्त रवि इसी के लिए मुफीद है, और जो गुमराह रहे इसकी गुमराही इसी के लिए तबाह कुन है, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हूँ। और ए नबी, तुम इस हिदायत की पैरवी किए जाओ जो आपकी तरफ बजरिए वही भेजी जा रही है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो ये थी सूरत यूनुस। हम इंशाल्लाह आखिरी आयतों की तिलावत भी मिलके करते हैं। जी, आयत नंबर 104 से आउज़ बिल्लाह सब पढ़। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला अअबुदु अल्लज़ीना तअबुदून।